अल्केश पहला बार आया प्रोग्राम में?
फर्स्ट टाइम है ना?
पहले
इंग्लिश इंग्लिश में आया?
अच्छा इंग्लिश
जस्ट
अच्छा आपको इंग्लिश में आया? वेरी गुड। कौन सा क्लास में पढ़े? नीरज क्लास 10 में गया था ना? तुम क्लास 10 में गया कि नहीं? तुम 10th में? और तुम दोनों फ्रेंड? हरे ओम अघनेतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरन्मीलिताङ्गिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोरिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सघनरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सर्वहृतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सघनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदविशिष्टादिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका तन्त्र राधा गन्तु नमस्कृते तप्त कञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरि ब्रजवानंसिते देवी प्रणामामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्चिवासुन्दरदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रवृत्तानन्द श्रीअद्वैतगदाधर शिवाशादिगौरवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका दफ्तर में सेवन खंड सेवन खंड फर्स्ट चैप्टर यदि इंग्लिश में क्लास हो रहा अच्छा अच्छा इंग्लिश से किसी को दिक्कत नहीं ना? ना बोल कुछ समझता नहीं इधर If I speak in English, is it all right? English में ठीक है? नहीं आ रहा है? इसको बंद कर दो। We'll discuss today about a controversial point. Why Lord is partial to someone? Because what is his interest to become partial to someone? We'll discuss that. He is partial to his devotees, demigods, but he is inimical towards the demons. He helps the demigods to kill the demons. What is his interest?
हिंदी में कि इंग्लिश में?
टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत नया टर्म होता है।
ठीक है, पुस्तक में इंग्लिश में पढ़ेंगे और बोलेंगे हिंदी में, मेरा भी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप में प्रश्न आते हैं, भगवान क्यों देवता की मदद करता है, उसी को क्यों, भगवान का क्या इंटरेस्ट है? तो ये हम चर्चा करेंगे। थोड़ा पीछे ये चर्चा कहाँ हो रहा था, ये सारे दुनिया का राजा थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। और ये परिवार के प्रति कृष्ण इतना इतना प्रिय, ये परिवार सब व्यक्ति कृष्ण के इतना प्रिय थे, तो परीक्षित जब उनका मातृ गर्भ में था तो अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र, ठीक है, और भगवान उनका रक्षा करने के लिए स्वयं दूसरा किसी को भेजा ही नहीं, खुद ने सुदर्शन चक्र लेकर परीक्षित महाराज का जो माँ उत्तरा उनके गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को विनाश किया। यह से बात चलते हैं, वो व्यक्ति जिसको भगवान खुद ने आके मातृगर्भ में रक्षा किया है, वो भगवान का कितना प्रिय है। जो मातृगर्भ में उन्होंने कौन सा काम किया, भगवान की क्या सेवा किया, जो भगवान का इतना कुछ करना पड़ेगा? मातृगर्भ में तो भगवान का कुछ सेवा किया नहीं, तो यह सुनने पर ये भगवान का कितना प्रिय है, वह आके रक्षा किया, कितना बड़ा भक्त है। और जब उनको जन्म हुआ है, ये हमारे तरह वीडियो गेम क्रिकेट वगैरह खेलते नहीं थे, उनको खेलने का पुतली था कृष्ण। किसके साथ खेल कूद करते थे? कृष्ण का पुतली बना के उनके साथ खेल कूद करते बचपन से। तो वो कितने भगवान कृष्ण का प्रिय है, तो बचपन में उनका दूसरे को खेला ही नहीं था, उनको खेला था कृष्ण के साथ, कृष्ण का पुतली के साथ खेला, इतना कृष्ण का प्रिय। और सुखदेव गोस्वामी करके और एक भक्त भगवान का प्रिय भक्त है, उन्होंने इतना विरक्त है ये दुनिया के प्रति, हम तो दुनिया में आने के बाद समझ गए दुनिया कितना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने मातृगर्भ में पता चला ये दुनिया बहुत खतरनाक जगह है, नहीं जाएगी, लेकिन मातृगर्भ प्रवेश किया, लेकिन मातृगर्भ से उन्होंने बाहर में नहीं निकलना चाहते, 14 साल माता के गर्भ में रहा, बोले मैं जन्म ग्रहण नहीं करूँगा, ये दुनिया बहुत खतरनाक जगह है, यह जाएगा फिर पढ़ाई सी ए का पढ़ाई करना पड़ेगा, इंजीनियर पढ़ाई करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, रुपया कमाना कितना मगजमारी काम है, फंस जाएंगे फिर भर्ती जगह में, इसीलिए जन्म ग्रहण नहीं चाहिए। तो उनके पिता व्यासदेव ने कहा तुम जन्म ग्रहण करो, माता का कष्ट रहा 14 साल, माता बच्चा को पेट में धन कर रहा, माता के लिए कितना कष्ट है। लेकिन वह से उन्होंने आवाज लगाया, पिता के साथ बात कर रहा है, बोले नहीं मैं जन्म ग्रहण करूँ मेरा बंधन आ जाएगा, मैं जन्म ग्रहण नहीं करूँ। तो व्यासदेव बोले देखो मैं बहुत महान ऋषि हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ तुम्हारे बंधन नहीं हो, तो बोले नहीं आपको बात मैं स्वीकार नहीं करूँगा, जब कृष्ण आके बोलेंगे तब मैं बात स्वीकार। तो कृष्ण को आना पड़ा उनको जन्म लेने के, कृष्ण आके बोला हाँ सुखदेव जन्म ग्रहण करो, मैं वचन दे रहा हूँ तुमको माँ आक्रमण करेगा, तब उन्होंने जन्म ग्रहण किया। और 14 साल बच्चा जन्म ग्रहण करके पैदल में चलना शुरू किया, और पीछे पीछे उनका पिता व्यासदेव के भागने लगा, हे पुत्र आ जाओ, लेकिन वो मर के नहीं देख रहा है, बोले नहीं फिर पिता माता का प्रेम फंस जाऊंगा, शादी दे देंगे मुश्किल हो जाएगा। तो चलने लगे। तो इस तरह भौतिक जगत में उन्होंने विरक्त है, तो चलते चलते उन्होंने कहा जा पहुंच गया जहां परीक्षित महाराज मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। परीक्षित महाराज एक बार वन में शिकार करने के लिए गया था, तो उसी टाइम एक मुनि का गला में उन्होंने एक मृत सर्प दिया था, तो उन्होंने जल पान करने के लिए गया था, दिया नहीं, उन्होंने गला में मृत सर्प और उनका पुत्र ये देखकर उनको अभिशाप दिया जो परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर मृत्यु होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जब घर में आया, जब सुना इस तरह मुनि का पुत्र अभिशाप दिया 7 दिन बाद मृत्यु होगा, तब उन्होंने सोचा 7 दिन बाद यदि मृत्यु होगा तो फिर टाइम नष्ट करने की क्या जरूरत है, हमारी कोई दिखता है कैंसर वगैरह कोई बीमारी हो गया 2 महीने जी, तो रिश्तेदार बोला अच्छा खिलाओ, आप तो नहीं खा, 2 महीने में तो नहीं खा सकते, खिला जो जो उनका अच्छा खिलाओ, पता नहीं इस तरह। लेकिन परीक्षित महाराज उल्टा काम किया, 7 दिन बाद तो मरने पर खा के फायदा किया है, नहीं खाऊंगा 7 दिन, खाने पे 7 दिन, तो खा के टाइम क्यों नष्ट करते हैं, और 7 दिन बाद तो मरना पड़ेगा, तो अभी इतना जमींदार राज्य चलाने की जिम्मेदारी लेना मेरा क्या फायदा, मैं तो 7 दिन बाद मरूंगा तब तो राज्य चलेगा मेरा, पहले मेरा कितने बड़े बड़े राजा थे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन कितना मान राजा थे, नहीं फिर भी दुनिया चल रहा है, मैं चले जाएंगे उनके पास दुनिया चलेगा, हो सकता है अच्छा ही चलेगा, तो मैं क्यों टाइम नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने सब छोड़कर गंगा के तट पर बैठ गया। ये खबर दुनिया में फैल गया, परीक्षित महाराज सारे चीज छोड़कर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं गंगा के तट। सारे मुनि ऋषि आ गया, सबको पूछा अभी मेरा बस 7 दिन समय है, अभी क्या करना चाहिए, 7 दिन में जीवन कैसे सफल, उनके जीवन तो पहले से सफल है, भगवान कितने प्रिय, लेकिन भक्त सोचते हैं दिन तक सोचते हैं मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन क्या करने से भक्ति कर सकते। तो सब मुनि ऋषि को पूछा, लेकिन अलग अलग मुनि ऋषि ने अलग अलग उत्तर दिया, कभी दान करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, होम करो, इससे बहुत सारे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी आके पहुँचा तो सब मुनि ऋषि उठ के खड़ा हो गया, समझ ये सबसे श्रेष्ठ ऋषि, यह तो व्यासदेव, उनका पिता व्यासदेव भी था, व्यासदेव की तो नारद मुनि भी थी, सब उठ के खड़ा हो गया और सबने उनको परीक्षित महाराज उनको उच्च आसन दिया, जी आज ये आसन का वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, ये आप फोटो देख सकते, यह तो सब मुनि ऋषि बैठे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी उच्च आसन दिया और ये पूछने पूछने लगा जीवन का उद्देश्य क्या है, खास करके जो मृत्यु पथ यात्री है, हम जीवन में बहुत इस तरह रचना लग गया है, माई एम इन लाइफ, लगते हैं डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, CA बनेंगे, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तरह हमको भी शिक्षा दिया जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पूछना अभी नहीं है, बहुत पहले से पूछना क्या जीवन का लक्ष्य क्या आना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है, खास करके मैं जिस तरह आदमी अभी मर रहा हूँ, जो जीवन का लक्ष्य बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी मर रहे हैं उनके लिए जरूर और गुरुत्वपूर्ण कुछ होगा, तो उनका जो उत्तर है ये उत्तर है भागवत। जब परीक्षित महाराज राज्य छोड़कर मरने के लिए तैयार है और जहाँ पे वक्ता है सुखदेव गोस्वामी जिसको काबरा बनने का जरूरत नहीं है, और वो भागवत कथा लेकर हम 1 लाख रुपए नहीं देगा तो हम भागवत कथा करेगा नहीं, क्या बदमाश आदमी है, इतना लाखों रुपए देना पड़ेगा तभी भागवत कथा करेंगे, इस तरह आदमी के मन भागवत कथा होता है क्या लग रहा है। हमारे गांव में एक साथ बात है, हर एक तरह का ब्राह्मण होता है श्राद्ध करने के समय, आदमी मरने के बाद श्राद्ध होता है, तो अलग अलग ब्राह्मण रहता है, एक ब्राह्मण का अग्रधनी ब्राह्मण पहला दान उनका करना चाहिए। एक गरीब आदमी है, उनको पिता मरने के बाद कोई गाय वगैरह दान करना पड़ता है बैतरणी पार होने के लिए, ये रिवाज धर्म है क्या? तो गरीब आदमी नहीं दिया तो इतना नाराज हो गया, ठीक है श्राद्ध हो गया तो खाने के लिए बोले सब खाए, बोले नहीं गाय स्वर्ग नहीं खाएंगे, गाय स्वर्ग नहीं खाएंगे। इसका अर्थ क्या है? गाय के मांस स्वर्ग नहीं, उन दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। तो इतना लोभी हो जाते हैं। तो आज वो भागवत कथा लेकर भागवत सप्ताह कर रुपया कमा रहा है सर, जो बड़ा बिजनेस आज देखो इंद्रेश्वर में जितना सारे बिल बढ़ है सबसे ज्यादा बिल बढ़ है भागवत कथा करने के लिए, कि यह रुपया कमाने सबसे अच्छा रास्ता मिल गया। सम्मान भी मिलते पैसा भी मिलता है ना, क्या अच्छा है। तो यह परीक्षित महाराज सुखदेव से भागवत कथा रहा है, तो कथा में प्रश्न पूछना चाहिए और उसके बाद उत्तर रहते हैं। मन में प्रश्न आ सकते इस तरह नहीं, सुखदेव परीक्षित महाराज इतना बड़ा भक्त है एक इस तरह प्रश्न पूछते हैं, अभी इतना बड़ा भक्त है उनके मन में अभी संदेह है, प्रश्न आ सकते और विनीत रूप में प्रश्न पूछ सकते। तो आज सप्तम स्कंद भागवत में एक नंबर श्लोक से हम वो प्रश्न देखेंगे, परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं। श्री राजो उवाच, कौन राजा बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं किसको? आप मुश्किल हैं तो फिर आप किसी में
बड़ा कर
कितना हिट हो गया। तो राजा पूछ रहा है समो प्रिय सुहित ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रेश साथे कथम द्वैतम अवहरी विस्मय यथा। तो राजा पूछ रहा है ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? सुखदेव गोस्वामी। हे ब्राह्मण समप्रिय सुहित भूतानां भगवान स्वयं, भगवान स्वयं भूतानां अर्थात जीव का पूछ रहा है, भगवान स्वयं भूतानां सारे जीव के लिए भगवान समो प्रिय सुहित है ना, भगवान सारे जीव के लिए सम है, प्रिय है, सुहित है। फिर उन्होंने इस तरह व्यक्ति इंद्रिय शर्त कथम दैत्याम अवरी विस्मय जाता, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय अर्थात इंद्रिय मन स्वर्गराज इंद्र का इंद्रियस्य अर्थे अर्थात स्वर्गराज इंद्र को बचाने के लिए कथम से कथा आते हैं, जब कथम कैसे प्रश्न पूछते हैं तभी कथा शुरू होते हैं, ये कथम होना चाहिए, ये कथम कैसे, ये कथम जब है कैसे तभी कथा शुरू होता है, तो कथम तो ये पूछ रहा है तो कथा शुरू के शुद्ध क्वेश्चन इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यम अवहृत, दैत्य को अवहृत मारा था विस्मय जाता, मेरे तो बहुत विस्मय लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है। तो भगवान जिन्होंने सारा जीव की सृष्टि किया है, सारा जीव के उन्होंने सम प्रिय सुहृद हैं, फिर उन्होंने कैसे इंद्रियों का पक्ष लेकर सारे दैत्यों को मारा, इन उसको विस्मय लग रहा है। आपका क्या लग रहा है, प्रश्न आपका मन में है? इस तरह आपको प्रश्न नहीं आता मन में? इस तरह से प्रश्न पूछा, पास में हजार हजार मुनिषि बैठा है, उनके मन में सारा शंका नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज इतना बड़ा भक्त है, आज भगवान के चरित्र पर इतना उनका अभी डाउट है, संदेह क्या हो रहा है? हाँ सुने परीक्षित महाराज कितना बड़ा भक्त है, भगवान काम इतना अभी डाउट है अभी तक, और शुद्ध पूछा भी नहीं पूछा रही, मैं तो सोचता हूँ तुम कितना बड़ा भक्त है, तुम्हारा अभी भी डाउट संदेह है, यह क्या हो रहा है? गलती किया तुम्हारे साथ इतने संग करके नहीं, इस तरह बोलो, आप प्रश्न आ सकते, आप प्रश्न विनीत में प्रश्न पूछ सकते, कोई समस्या नहीं। हमारे मन में आया, हाँ आश्चर्य लग रहा है, कैसे हो सकते? न ही अश्य अर्थ सुरोग नई साक्षात निश्रेय आत्मन न एव अशुरेभ्य विद्वेष न उद्वेग च अगुणस्य हि, कहते हैं न ही अश्य अर्थ सुरोग नई साक्षात निश्रेय निश्रेय स आत्मन, भगवान का ये कहता है लास्ट श्लोक है चौगुणस च अगुणस्य हि, भगवान ये जगत में कोई गुण के द्वारा आबद्ध है? भगवान का ही भौतिक जगत में जिस तरह हमको हमारे कुछ गुण वगैरह है, जाए इस तरह गुण भगवान के अंदर है नहीं? भगवान का कोई भौतिक, जिस तरह हमको भूख लगते हैं, दुख होते हैं, आनंद होते हैं, इस तरह भौतिक जगत में जो चीज होते हैं भगवान का इस तरह होता है नहीं? होते हैं हमारे भौतिक जगत से जितना सारे गुण है ये भगवान का अंदर नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम अगुण। भौतिक जगत में कोई गुण नहीं है इसलिए उनका नाम निर्गुण। जब भगवान के साथ ये भौतिक जगत तीन गुण सत्य रज तम, तीन गुण से सारे जगत तैयार है, ब्राह्मण लोग सत्य गुण का है, क्षत्रिय रजगुण का है, और वैश्य रज तम का मिश्रण है, और शूद्र तमोगुण में है, लेकिन भगवान एक गुण का उल्टे है, इसलिए भगवान नाम निर्गुण। यदि भगवान निर्गुण होगा तो उनको ये देवता को मदद करने उनका क्या फायदा मिलेगा, और असुर को असुर के साथ विद्वेष इतना उद्विग्न क्यों, इतना टेंशन क्यों? ओ मेरा साथ विद्वेष कर रहा है, मुश्किल हो जाएगा, तो असुर को इतना डर क्यों, उद्वेग विद्वेष, असुर के साथ उद्वेग विद्वेष करना जरूरत क्या है? इस तरह के चांस है असुर लोग भगवान का पोस्ट एक दिन ले लेंगे, चांस है? ये चांस है तभी उद्वेग आ सकते, और इस तरह कोई सुविधा है जो देवता को मदद करेंगे, भगवान को भोग वगैरह खाना पीना अच्छा खिलाएंगे, भगवान का भोग ज़्यादा है, इस तरह क्या कुछ है क्या? देवता को मदद करने से भगवान का कुछ फायदा है, और उसी लोग ज़्यादा ज़्यादा फैल जाएगा, भगवान की समस्या होगा, तो फिर भगवान को ये असुर लोग को मारने के लिए देवता को मदद करना क्या जरूरत है? यदि भगवान सम है इस तरह क्यों कर रहे हैं? इति न समूह भाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहान जातस तत् भवंश चित्तमर्हति, इतना समूह भागा नारायण गुणान प्रति, इसी कारण एक सुमहान मुनि सुखदेव गोस्वामी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो ग्रेट फॉर्चुनेट लर्नेड ब्राह्मण वेदर नारायण इज पार्शियल और इम्पार्शियल हैज बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट डाउट। मेरा मन में बहुत बड़ा एक संशय आ गया है कि भगवान पक्षपात करते हैं कि निरपेक्ष है, ये मेरे लिए बहुत एक संशय। काइंडली डिस्पेल माई डाउट सेतुम आरति सेतु छेदन करना, कृपया करके मेरा ये संदेह दूर कीजिए। विथ पॉजिटिव एविडेंस दैट नारायण इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इक्वालिटी ऑफ एवरीवन, क्योंकि उनके मालूम है भगवान नारायण न्यूट्रल इक्वल, लेकिन अभी काम में लग रहा नहीं है। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ आपके पास प्रमाण, आप प्रमाण करें भगवान न्यूट्रल और इक्वल है। क्या क्या लगा इस तरह प्रश्न सुनकर, इसको उत्तर सुनना चाहिए? ये उत्तर अभी सुखदेव गोस्वामी दे रहे, ठीक है। सुनने के पहले हम तो भगवान का भक्त है, तो आप लोग को क्या लग रहा है इसके क्या कारण हो सकते, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म कर, क्या कारण हो सकते दुर्गेश, क्या कारण हो सकते कि भगवान निरपेक्ष की पक्षपात करते हैं और सुखदेव गोस्वामी के पास उन्होंने एविडेंस प्रमाण के साथ सुनना चाहते हैं, खाली हाँ हाँ निरपेक्ष है, नहीं ये जो हो रहा है मैं तो देख रहा हूँ पक्षपात कर रहे हैं, तो आप प्रमाण के द्वारा दीजिए नहीं भगवान निरपेक्ष है। तो आप लोग को क्या लग रहा है ब्रेनस्टर हेमेशपुर, क्या सुखदेव गोस्वामी जो प्रश्न पूछ पास परीक्षित प्रश्न पूछ रहा है तो क्या उत्तर होना चाहिए? कठिन प्रश्न प्रश्न को निराज नवल को कि भगवान पक्षपात करते हैं, करते हैं नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं ये लोग बोला नहीं करते, लेकिन देख रहे हैं भगवान देवता को मदद कर रहे हैं, असुर को मार रहे हैं, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, भगवान देवता को मदद किया नहीं असुर को मारने के लिए, अर्जुन को मदद किया नहीं दूसरे नदी पक्ष मारने के लिए, तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो फिर जो पक्षपात करते वो आदमी अच्छा है, किसी को पक्ष लेते हैं? तुम दो भाई है, मामी एक भाई को ज़्यादा प्रेम करते हैं, तुमको नहीं करते हैं, अच्छा लगेगा? किस तरह माता है कि भाई को ज़्यादा प्रेम का हमको नहीं करते, नाराज होगा कि नहीं? तो भगवान किसी को पक्षपात करे तो दशरथ आदमी से नाराज होगा, अरे ये हमारे किसी पीते हैं हमको उनको पक्षपात कर रहे हैं। कोई उत्तर है राजेश्वर?
हमारा जब निकला था तो वहाँ भगवान मोहनी के रूप में आए थे और देवताओं का
देवताओं को दिया, वशी को नहीं दिया, तो पक्षपात नहीं हुआ भगवान मोहिनी मूर्ति आकर वशीर को मोहित करके उचित उनके रूप देख के मोहित, हाँ अच्छा अच्छा हम शादी करेंगे लेकिन उनका बोला ठीक है तुमको दे देंगे, तुम तो बहुत बुद्धिमान है, तुम तो धैर्यशील है, वो जो बोला सब मान लिया, अरे इधर में देवता के बाट इस तरह क्यों क्यों देते हैं सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठ महाराज हरिश्चरित्रम अद्भुतम जत भगवत महात्म भगवत भक्ति वर्धनम। सुखदेव गोस्वामी कहा साधु पृष्ठ महाराज, हे महाराज आप जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं चाहता, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। साधु पृष्ठ हरिश्चरित्रम अद्भुतम, क्योंकि हरि का चरित्र है अद्भुत। जब भगवत महात्मा भगवत भक्ति वर्धनम, ये उनके ये आचरण के माध्यम क्या होते हैं, जब भागवत महात्मा भागवत आता भगवान का भक्तों का भगवत भगवत भागवत यह भागवत महात्मा जिसके कारण भक्त का महात्मा बढ़ते हैं महिमा बढ़ते हैं और भागवत भक्ति वर्धन भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। कौन एक कहानी बताएंगे कौन सा प्रहलाद महाराज, जब भागवत महात्मा प्रहलाद महाराज का कहानी में किया ये कहानी सुनने क्या आते हैं प्रहलाद महाराज का महिमा बढ़ गया और ये सुनने हमारे भगवत भक्ति वर्धन हमारी भक्ति बढ़ते वह में हम क्या देखते हैं भगवान लीला के माध्यम हिरण्यकशिपु को भगवान खुद ने मारा अब प्रहलाद महाराज की मदद किया। ये तो भगवान एक बख्श लिया वहाँ ये काम को ये प्रश्नों को इतने साधुवाद जाने शुद्ध गोस्वामी आप बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इसके प्रश्नों के उत्तर जो आते हैं ये प्रश्न के उत्तर में भगवान को जो महिमा वर्णन करेंगे कार्य वर्णन करेंगे इसके द्वारा भगवान का भक्त का महिमा वर्णन होगा और जो सुनेगा उनके भगवान के प्रति भक्ति वृद्धि होगा। गियोते परमं पुण्यम ऋषिवीर नारदादि नत्त कृष्णाय मुनये कथिष्य हरे कथम। तो ये चीज समझाने के लिए मैं तुमको एक कहानी बताऊंगा और जो कहानी ने नारद मुनि ने कहानी कहा तो इस तरह उत्तर देना चाहिए। जो भी कोई उत्तर देंगे ना कोई प्रश्न पूछे के उत्तर होना चाहिए शास्त्र से उद्धृति देकर। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहा है आपका प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा नारद मुनि जिस तरह बताया मैं उस तरह बोलूंगा और आप जिस तरह प्रश्न पूछे इस तरह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा था और नारद मुनि ने जो उत्तर दिया मैं अभी वो बात वर्णन करूंगा। जब इस तरह बोलेंगे तो मन में किसी को और संदेह होगा, संदेह नहीं। तो अभी नारद मुनि कहानी वर्णन करें शुद्ध गोस्वामी डायरेक्ट इस बीच में नारद मुनि का शिक्षा वर्णन कर रहा है। राष्ट्रीय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछा हे भगवान सबके सामान जब ने कृष्ण दंत शिशुपाल शिशुपाल को मारा शिशुपाल का भाई दंत वक्र दोनों में कृष्ण ने मारा सबका सामान और मरने के बाद उनका आत्मा शरीर से निकल करके कृष्ण का शरीर में विलीन हो गया। इसका अर्थ है उनका मुक्ति मुक्ति मिल गया। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न जो हम जानते हैं जो बचपन से कृष्ण के साथ इतना विद्वेष किया है जो उनका बचपन में पहला मुख खोला जो बात किया है बच्चा तो रोते हैं वो पहले गाली देना शुरू किया कृष्ण को उनका उनका चरित्र इस तरह था बच्चा रोते हैं उनको उन्हें रोना नहीं उनका रोना है गाली देना कृष्ण को उनके बचपन से काम ही है, इतना बड़ा असुर था। तो जिन्होंने इतना बड़ा असुर है को मरने के बाद कैसे भगवान के शरीर में मिली ना कि मुक्ति कैसे होगी, ये कैसे संभव? और युधिष्ठिर महाराज पूछा, हम तो सुना और एक कहानी है बेन महाराज, ध्रुव महाराज के परिवार में, उन्होंने इस तरह बहुत पापी थे, इतना पाप किया है ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण के द्वारा उनको मार डाला था, लेकिन उनको तो इस तरह मुक्ति नहीं मिला। लेकिन बेन महाराज को मुक्ति नहीं मिला और इनको कैसे मुक्ति मिल गया? ये प्रश्न का उत्तर नारद मुनि, ये प्रश्न किसने पूछ रहा है?
युधिष्ठिर
महाराज। तो नारद मुनि उत्तर दे रहा है, देखो यदि भी असुर है लेकिन कृष्ण के बारे कितना चिंतन करते थे मालूम है आप लोगों को? हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे। और उन्हें कहा नारद मुनि का असुर लोग जितना भगवान को स्मरण करते हैं हम भक्त लोग उतना नहीं कर पाते हैं। भक्ति के माध्यम भगवान के जितनी याद होते हैं असुर लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं, है कि नहीं? या यदि इस तरह कतल गिर जाएगा आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? इस तरह
डर लगे,
क्या डर लगेगा? कृष्ण का बड़ी याद होगा, लेकिन कंस के सामने इस तरह होता था कृष्ण आ गया, होता था कि नहीं होता था? यदि कंस के सामने इस तरह साउंड होता था तो कंस क्या सोचता था? कृष्ण आ गया। तो नारद मुनि ये कहता है भक्त लोग जितना कृष्ण को याद नहीं कर पाते असुर लोग उनको ज्यादा करते हैं। तो हमें कृष्ण को भगवान का हमेशा याद करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य है, वो चाहे भक्ति में हो या विद्वेष में। तो प्रश्न है ये कैसे होता है? विद्वेष करते ही कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी मुक्ति हो जाता? हाँ, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, आप अनुकूल ले प्रतिकूल में भगवान नाम लेने की तो शक्ति है कि नहीं? आप अनुकूल में लेंगे कि प्रतिकूल में भगवान क्या लेंगे, तो उनका नाम का शक्ति नहीं? फिर भी ये बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, अरे प्रतिकूल में चिंतन करा फिर भी मुक्त हो गया, समझने में नहीं आते। तो नारद मुनि ने और एक समझाने के लिए और सिंपल करने के लिए और एक उदाहरण दिया, इस तरह दीवार के अंदर गर्त के अंदर जो कीड़ा रहता है उसका हमेशा डर में निकल बाहर में आ जाऊंगा प्रजापति मुझको खा लेंगे, तो हमेशा किसका चिंतन है? प्रजापति, उनको बाहर में आना इतना डर है बाहर में जाऊंगा वो खा लेंगे, लेकिन मेरा बात जो इस तरह तो पंखा रहता था मैं फिर जा सकता था, वो नहीं खा पाएंगे। तो हमेशा उनको चिंतन करते करते उनको क्या पंखा आ जाता। तो कीड़ा का यदि इस तरह हो सकते चिंतन करके एक कीड़ा प्रजापति बन सकते, तो उस तरह भगवान का चिंतन करते करते शरीर भी इस तरह चिंतन। तो प्रश्न आते हैं तो असुर होना अच्छा है? नहीं, असुर होना अच्छा नहीं, बहुत कठिन काम, बहुत तकलीफ सहन करने वाला, हिरण्य कशिपु को कितना कुछ करना, कितना हजार साल तपस्या की उसके बाद कितना टेंशन है, प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं। तो फिर भी प्रश्न है असुर लोग इस तरह क्यों करते हैं? इच्छा करके करते हैं क्या? नहीं। नारद मुनि समझाने की कोशिश की, देखो युधिष्ठिर महाराज ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है प्रकृति के गुण अनुसार होता है, शुभ का जो प्रभाव है दोपहर का प्रभाव है, रात का प्रभाव अलग नहीं। रात में अंधेरे होने से मन में कितना बुरा भावना आता है, पाप कर्म करने की इच्छा आती है, तमोगुण का प्रभाव। दोपहर होने से दिन में भाग दौड़ करना पड़ता है, और सुबह कितना सात्विक है, कितना अच्छा जाएगा। लेकिन जो तमोगुण का आदमी है, अरे क्या जगह भाई, शराब का दुकान अभी तक खोला नहीं, कौन सुबह उठते फालतू समय है, सुबह अच्छा लगेगा, एक शराब का दुकान खोला नहीं, ये नहीं वो नहीं क्या है, चलो सो सके रहो तो सोते रहते हैं, क्या फालतू समय है, अच्छा नहीं है। रात कितना अच्छा है, कितना शराब का दुकान ये है, नाइट क्लब है, कितना अच्छा है। शुअर के यदि स्वर्ग लोक में घूम के आने को बोला, और क्या वो नहीं, क्या फालतू, एक भी ड्रीम नहीं है, क्या है, अच्छा नहीं रहेगा आपको। कौन शहर अच्छा उनके लिए, सारा ड्रेन है और सारे ड्रेन खोला पड़ा है, शुअर के लिए वो शहर सबसे अच्छा है। क्यों उनका अच्छा लगता है, क्योंकि वो गुण उनके अंदर है, इसीलिए वो गुण को अच्छा लगता है। इसीलिए जो तमोगुण का व्यक्ति है वो तमोगुण के पकड़ लेते हैं, जो रजोगुण के व्यक्ति है रजोगुण के पकड़ लेते हैं, जो सत्वगुण है सत्वगुण, जो तमोगुण का व्यक्ति है उसको राइस चावल खाने देगा वो नहीं खाएगा, बोला नहीं अभी नहीं खाए, इसको ठंडा करके पांता बना के बाद में लंका लगा के खाएंगे राइस, क्योंकि तमोगुण का आदमी है, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। उस तरह जब तमोगुण में परिवर्तित हो जाएगा तो खाने मजा लग जाएगा, खाने के टाइम इस तरह कर आँखों में पानी निकलेगा, इस तरह करेगा तब तो खाना मजा है, क्यों मजा लगता है, तब गुण के आदमी है। फिर गुण का प्रभाव में उस तरह चीज को पकड़ लेते हैं। तो प्रकृति के एक गुण के कारण ही सब कुछ हो रहा है, कोई असुर बन जाते हैं, कोई साधु बन जाते हैं, प्रकृति के गुण के कारण। और सत्वगुण का तमगुण का स्वभाव क्या है, अंधेरा है, लाइट नहीं रहेगा, और सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाश आ रहा है। तभी बोला अरे रात में क्यों लाइट नहीं रहता है, सूरज क्यों नहीं उठते हैं, थोड़ी होता है, इसीलिए तो तमगुण है। दिन में क्यों अंधेरा नहीं होता है, होता है किस तरह, तो इसीलिए तमगुण जो स्वभाव है तमगुण के कारण ध्वंस होगा, और सत्वगुण के कारण ज्ञान का प्रकाश उद्धगति होगा। जो तामसिक व्यक्ति है तमगुण में है वो असुर है, उनका नाश होगा, वो सत्वगुण में जो है देवता लोग है उनकी वृद्धि होगा, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो इसलिए हम नहीं कह रहे रात में क्यों सूरज नहीं, दिन में सूरज क्यों, इस तरह नहीं है। तो उसी तरह जो भगवान ये प्रकृति बनाया है, ये प्रकृति के अंदर कंट्रोल करने का कंट्रोल करके टाइम समय को दिया, समय के माध्यम में कंट्रोल, सबका हाथ किसके ऊपर छोड़ दिया, प्रकृति को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी दिया समय को, समय के अनुसार जो तमोगुण नाश हो जाएगा ये सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होगा। तो इसे भगवान का क्या हाथ है, भगवान ने बोल दिया, कोई चोर बोलेगा अरे हमको, हम तो सरकार को टैक्स वगैरह देते थे, हमको जेल खाना में क्यों डाल दिया, हमारे पक्षपात हो रहा है, बोलेंगे पक्षपात हो रहा है, रात में निर्यात चल रहा है रात 12 बजे, हाँ सामने पुलिस देखा है तब कैसे लगेगा, ये पुलिस को देखेंगे डर लगेगा, क्योंकि चोर है इसे डर लगेगा, पुलिस को देख कौन डरेगा, चोर है, लेकिन लेकिन किसको अच्छा लगेगा, जो साधु है, और देखो भगवान कितना कृपालु है, एक रात में इतना दोपहर रात में पुलिस भेज देंगे उसको रक्षा करने के लिए। तो चोर अच्छा कि बुरा है, या पुलिस अच्छा कि बुरा है, साधु आदमी के लिए अच्छा है लेकिन चोर के लिए
बुरा है,
बुरा है। हम परीक्षा देते हैं, वो एग्जाम किस तरह को नहीं, आज हमारे टीचर बहुत डिस्टर्ब किया है, कॉपी करने नहीं दिया, बहुत डिस्टर्ब किया है टीचर, क्या किया
बैठ बैठ
टीचर किया क्या हमको एग्जाम में बहुत डिस्टर्ब किया है, क्यों कॉपी करने नहीं दिया क्या डिस्टर्ब हुआ क्या टीचर का वही काम है जैसे परीक्षा सिस्टम रुकना होता है, तो टीचर का पक्षपात नहीं है, पुलिस का पक्षपात नहीं है, उसी तरह भगवान का भी पक्षपात नहीं है, आप पाप कर्म किया इसीलिए जेल का नाम है कैद का नाम है, ये सरकार का पक्षपात नहीं है, इसी तरह असुर लोग का विनाश होगा ये भगवान का पक्षपात नहीं है, तमोगुण का आश्रय किया है इसलिए उनका विनाश होगा, सत्यगुण का आश्रय करो व्यक्ति, और उसके बाद फिर नारद मुनि ने कहा देखो तुम्हारे मन में बहुत दुख है, उसी भगवान किस तरह पक्षपात कर रहे हैं, फिर भी और एक कारण है, ये दंत वक्र जो शिशुपाल है ये एक्चुअली ये भगवान का बहुत प्रिय है, ये लोग वैकुंठ में भगवान का पार्षद थे, द्वारपाल थे, ये अभिशाप के कारण ये यहाँ पे आया है, असुर रूप में एक ड्रामा कर रहा है, लेकिन भगवान का बहुत प्रिय है, तो इतना नारद मुनि समझाया, और उसके बाद फिर कहानी तो असुर नहीं है, ये तो भगवान के कितने नित्य पार्षद है, वो लोग भी असुर का अभिनय किया, तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि का उद्धृत देकर वर्णन कर रहा है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन हम गुण को आश्रय करके भगवान का विरोध करते हैं, और हम से तो भगवान क्यों पक्षपात कर रहे हैं, भगवान निरपेक्ष है, समम सर्वभूतेषु न मे दिश्यस्ति नापि, भगवान का तो मैं सबको समाते हूँ, लेकिन मैं कोई किसी विद्वेश नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, लेकिन जे भजन्ति तुम मम भक्ता मोहित देशो चक्रम, लेकिन जेरा जो मुझको भक्ति करते हैं तो उसको मैं प्रेम नहीं करना चाहिए, कि ये बिजनेसमैन है यहाँ पे कोई कोई है कोई बिजनेसमैन कोई दुकानदार है, उनके पास कोई 10 रुपये लेकर आया, जितना सामान देगा कोई 10,000 रुपये लेकर देगा, सेम सामान देगा क्या नहीं, बोले आपको पक्षपात कर उनके इतना दिया हम कितना कम दिया, पक्षपात है नहीं देगा तो पक्षपात है, जो 5 रुपये को उतना ही देना, जो ज़्यादा रिपन नहीं देना, ये समदर्शी है, तो भगवान को जब शत्रु भी दिखाना चाहे भगवान शत्रुता करते हैं, जब पक्षपात भी भगवान पक्षपात करते, भगवान का यह क्या, ये भगवान का समदर्शी है, हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है,
क्लास से नहीं
है पहले की क्लास के बारे कोई प्रश्न है और जय प्रभु,
जैसा बता रहे हैं कि जय विजय जो है वो भगवान से मतलब हमेशा भगवान के प्रति विरोध था, उनका गाली भी आपने बताया किसी बार जंगल जैसे ही गाली पकड़े एक्चुअली गुरु, हम लोगों का भी तो सारा एक्टिविटीज एक तरह से भगवान के लिए एनली कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ भगवान उधार करेंगे
तो फिर भी देखना भगवान जिस तरह उद्धार हुआ गया उनका निविशेष ब्रह्म ज्योति में मिला है, भगवान का सेवा करने का मौका नहीं मिला, उस तरह मुक्ति चाहते हो, भगवान का ज्योति में मिल गया भी सेवा करने का मौका नहीं, ना खाना पीना कुछ मिलेगा, टीवी देखने का मौका वाला कुछ नहीं मिलेगा उस तरह मुक्ति क्या जरूरत है, ये इस तरह मुक्ति एक नरक की तरह है, कुछ नहीं मिला भक्तों के पास, जो दुख भोग रहा है उनके लिए अच्छा हो सकते, लेकिन जो भगवान को सेवा करने का मौका मिला उनको जो सेवा नहीं करने दे उनका नरक है, इसीलिए प्रभुदान सरस्वती का कैवल्यम नरक आयते, इस तरह मुक्ति नरक जैसे, जिसको भगवान का सेवा करने का मौका मिला है उनको मुक्ति देगा इस तरह जो ब्रह्म जी मिली रह लो वो रह पाएंगे। जो नरक में है वो लोग भी ठीक है, नरक में बहुत ज्यादा में कष्ट है, लेकिन यह तो कम से कम कुछ नहीं है उनके लिए, अच्छा हो सकते। लेकिन जो भगवान की सेवा कर रहा है उनके लिए कितना कष्ट का।
तो
शरण करके उनको भगवान का विनाश करना चाहते हैं, इसीलिए स्मरण कर रहे हैं। अच्छा,
दो भक्तों के बीच भी पक्षपात करते
हैं, दो भक्तों के बीच में भक्त तो के भक्तों के साथ भक्त तो शत्रुता नहीं होते हैं, पक्षपात तो नहीं है। एक भक्त दूसरे भक्त तो शत्रुता नहीं होगा तो पक्षपात कैसे होगा।
देखो जैसे वो भक्त उसकी भक्ति बहुत कुछ प्रकार की है और दूसरे भक्त की भक्ति मतलब
रिसिप्रोकेशन, जो जितना लेकर आए उतने सामान देगा, ये पक्षपात नहीं है, समदर्शी। और किसी का प्रश्न है? अच्छा,
दो व्यक्ति है, एक अच्छा जीवन जी रहा है और एक नॉर्मल अच्छी लाइफ नहीं जी रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार ये भगवान, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये भगवान पक्षपात कर रहा है, किसको अच्छा जो सोर्सेस होते हैं संसाधन होते हैं भगवान ने इसको उपलब्ध नहीं करवाया और एक को अच्छा फैसिलिटीज दी या उसको अच्छी मतलब दी है, मतलब जो भी सुविधाएं हैं या उसको अच्छी अर्निंग पावर दी है, तो एक को अच्छी फैसिलिटी और एक तो हम ऐसा बोले कि भगवान पक्षपात कर रहा है, या फिर ऐसा बोले कि ये एक कर्मों का फल है कि वो उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए वो उसको मिल रहा है, क्या माने, पक्षपात माने या फिर कर्मों का फल माने?
आप सीए पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम आपका?
पवन
का, पवन बोल रहा है पक्ष। आप मानो अगले एग्जाम कब है? नवंबर में पास हो जाओगे तो सिर्फ शब्द में पास करेगा, पास करेगा सब, सबसे पास करेगा, मानो आप नवंबर में सीए कंप्लीट कर पास आउट हो जाओगे सब उसी
पास यही है, बट
नहीं हम ऐसा करते हैं पास हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरा आदमी तो सब सब तो नहीं होगा, होगा कि सब
नहीं,
तो उसी टाइम आप पास किया, जो पास नहीं किया है आप बोले गए टीचर लग पक्षपात के लिए हमको पास किया दूसरा को नहीं किया, इस तरह मनोभावना आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपसे देखो मैं अच्छा पढ़ाई किया मेरा पास हो गया, लोग पढ़ाई नहीं कि नहीं, लेकिन इस तरह भावना कौन सोचेगा जो फेल किया उस तरह कि इस तरह के सबको क्यों मैंने पास नहीं किया। कौन चाहते हैं? जो पढ़ाई नहीं करता है वो इस तरह चाहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वो भी इस तरह नहीं चाहते हैं। जो IIT में एडमिशन लिया है वो क्या चाहते हैं? सबका IIT में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं चाहते। लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो दावी कर सकते हैं क्यों सब IIT में एडमिशन नहीं है, सब मेडिकल में क्यों एडमिशन नहीं है, वो इस तरह अभिजय कर सकते। तो आज आप CA सर्टिफिकेट क्यों मिला? आप पढ़ाई किया, और दूसरा को क्यों नहीं मिला? पढ़ाई किया। आज जन्म के बाद कोई राजा का पुत्र सोना का चम्मच से खा रहा है और जन्म के बाद कोई आंधा है खाना नहीं मिल रहा, क्यों हो रहा है? निश्चित में पूर्व जन्म का कर्म का फल है। अच्छा कर्म करो, अभी अच्छा कर्म करो तो अच्छा ऑफिस में अच्छा कुर्सी मिल जाएगा, नहीं करके कैसे हम अच्छा कुछ आशा कर सकते? तो जो कुछ मिल रहा है हमारे पूर्व कृत कर्म का फल अनुसार मिल रहा है, इसलिए हम किसी को इंजन नहीं लगा सकते। हमें जो कुछ मिल रहा है कर्म का फल अनुसार, आप ये जीवन में जो कुछ देख रहा है पूर्व कर्म का फल नहीं। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? क्लास 12 में पास किया इसीलिए आप CA पढ़ाई करें। क्लास 12 में क्यों पास किया? क्योंकि क्लास 10 में पास किया इसीलिए आप 12 में पढ़ने का मौका मिला। क्लास 10 में पढ़ने का मौका कैसे मिल गया? क्योंकि क्लास 9 पास किया। क्लास 9 में पढ़ने का मौका क्यों मिल गया? क्योंकि आप क्लास 8 पास किया। तो अभी जो कुछ है हम पिछले कर्म का फल है। अभी किसी को मर्डर कर दो यहाँ पर तो जेल खाना में जाना पड़ेगा, तो अभी के कर्म फल में अगले कुछ मिलेगा। तो अभी जो कर्म कर रहे हैं किसी को मर्डर कर दिया उसके बाद कहाँ जाएंगे? जेल में। तो अभी जो कर्म करें इसके फल में नेक्स्ट जगह मिलेगा। तो अभी हमको जो मिल रहा है पिछले कर्म का फल हो सकता है, ये जन्म का भी पिछले जन्म का भी हो सकता है, इसलिए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ जरूर। लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उन्होंने भगवान सारे फल को मौकूफ कर दे सकते। राजा का एक क्षमता रहता है ठीक है, उनके सारे मृत्यु दंड का आश्रम सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, सरकार बोल ठीक है माफ कर दिया, हो सकते कि नहीं? उसी तरह जो भगवान के भक्त मान जाते जितना सारे कुछ है भगवान का आत्मसमर्पण करते हैं तो बहुत ठीक है, महादेवी को बोलते ठीक है छोड़ दो ये आदमी सुधर गया। एक भगवान के भक्त के लिए हो सकते, दूसरा किसी के लिए कंसेशन नहीं। जिस तरह एक प्रेसिडेंट क्या बोल इस तरह आइन दिशा, दूसरा किसी को क्षमता नहीं है। उसी तरह भगवान ही केवल किसी के कर्म को बदल सकते, दूसरा किसी को क्षमता नहीं। कर्म अनुसार फल सबको ही होना पड़ता है। ये ब्रह्मा खुद ने कहा मेरा क्षमता नहीं है, क्यों भगवान का असर कर्मानि निविदा होती किंतु जो भक्ति भाजाम, जो कृष्ण का भक्ति करते हैं वो उनके सारे कर्म का फल नाश होता है। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर दूसरा जितना काम करोगे कर्म अनुसार सबको फल होना पड़े। ठीक है
भगवान भगवत बोलते हैं मैं दसवें अध्याय में गए जो अस्त्रों में वज्र हूँ, अस्त्रों में वज्र हूँ। तो प्रभु जैसे भगवान हर चीज़ में अपनी श्रेष्ठता दर्शा रहे हैं उस अध्याय में, तो भगवान उधर जगह सुदर्शन चक्र क्यों नहीं बोला भगवान ने? क्योंकि सुदर्शन तो सभी अस्त्रों का राजा है।
भगवान बहुत कुछ बोल सकता था, फिर अभी उसके बाद बोले इसका नाम क्यों नहीं बोला? इसीलिए भगवान का मालूम है एक कॉलेजिक में एक व्यक्ति आएगा उनका नाम महक महेश्वरी इस तरह का भगवान को मालूम है, इसीलिए उन्होंने दशम अध्याय का लास्ट में कहा, हाँ लास्ट श्लोक क्या है 41-42 नंबर श्लोक, जत जत विभूतिमत सत्यम श्रीमत उर्जितम हे बाबा तत्त एव अवगच्छतम मम तेजांश संभवम। मैं जो जो नाम नहीं बताया है अर्जुन जहाँ पे जितना कुछ श्रेष्ठ देखोगे यत यत विभूतिमत सत्यम श्रीमत उर्जितम ए बाबा तत्त एव अवगच्छतम मम तेजांश संभव, वो मेरा शक्ति के एक अंश है। उसके बाद भी भगवान का हस्त मेघ का डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। उसके आगे और एक श्लोक कहता है अथवा बहु नहीं तेन किंग यते न तबार जिनो, हे महक महेश्वरी तुमको कितना बताऊंगा मेरा ऐश्वर्य कहाँ कहाँ है, लेकिन एक ही बात समझो कि मेरा एक शक्ति का क्षुद्र अंश से सारा जगत के धारण कर रहा हूँ तो फिर मैं कौन हूँ समझो। तो सारे शक्ति का वर्णन का संभव है विष्णुपम इदम कृष्णम एकांशन स्थित जगत, मेरा शक्ति के एक अंश से सारा जगत के धारण कर रहा हूँ तो मैं कैसे मेरा शक्ति का सारा वर्णन कर सकते। अब मैं वर्णन कर तुम्हारे सुनने का टाइम है, अब घड़ी देख रहा है नहीं अभी खा पसा रहा टाइम जाना है।
जैसे कई बार हम लोग भगवान से प्रार्थना करते तो कभी समझ में नहीं आता कि किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपका जो इच्छा हो वो हमारे जीवन में हो या वैष्णव का सेवा मिले हरिनाम को प्रति रुचि, तो किस तरह क्या प्रार्थना करना चाहिए?
ये गुण के मात्रा अनुसार करेंगे, हम शुअर बनेंगे तो भगवान का है भगवान ये शहर में कोई ड्रेन बना देना खाओ और कोई ड्रेन में ढक्का नहीं होना चाहिए, खुला पका होना चाहिए। हमारे प्रवृत्ति अनुसार ही प्रार्थना करेंगे। हमको क्रिकेट अच्छा लगेगा तो हम सारे शहर में एक एक करके स्टेडियम बना देंगे, आज मेरा लड़का होगा सबको तेंदुलकर बना दूंगा। तो हमारे चेतना अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। इसीलिए वैष्णव का भावना है भगवान हम नहीं जानते कौन सा अच्छा है, तो मैं नहीं जानता कौन सा प्रार्थना करना अच्छा है, इसलिए मेरे लिए जो अच्छा है मैं आपको संपूर्ण शरणागत हूँ। मेरा मालूम नहीं मेरे लिए कौन सा अच्छा है, आप मेरे लिए जो अच्छा हो कीजिए, ये भक्त का मनोभाव।
और किसी का कोई प्रश्न है?
ठीक है, ये रखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन।
कभी कभी प्रभु जैसे हम जैसे वैष्णव स्थान देखते हैं तो अनुकूल लेना कृष्ण अनुशील लेना, मतलब जो भी भगवान की भक्ति करने के लिए जो अनुकूल हो उसको चलना चाहिए, जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ देना चाहिए। पर कभी कभी प्रभु उसमें भी द्वंद्व होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से भगवान पे और वैष्णव की कृपा पर आश्रित होकर फिर जो भी होगा वो भगवान को छोड़ दें, तो वो भी एक रास्ता हो सकता है कि
दैट इज बेस्ट। क्योंकि हम जो चाहते हैं हो सकते गलत है। हम बोले नहीं मुझको एक बाइक देना चाहिए, जीत कर रहे हैं। पिता माता नहीं देना चाहते हैं, नहीं हमको बाइक चाहिए। पिता माता को मालूम है वो बाइक लेगा वो आज जबकि एक्सीडेंट करके मर जाएगा, इसलिए नहीं दे रहा।
नहीं करता जीत,
नहीं करता, बहुत अच्छा है।
उसका मम्मा का कहना बहुत मानता
हाँ, लेकिन माता जानते हैं ये बच्चा अभी बाइक अच्छा नहीं चला सकता, चलाएंगे तो एक्सीडेंट करेगा, इसलिए नहीं दे रहा है। लेकिन बच्चा जीत कर नहीं हमको क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। माता हमारे से अच्छे समझते हैं, लेगा तो बाद में मुश्किल होगा। क्या पिता माता हमारे से शत्रुता है? हमारी निर्भरता देखो, अरे मेरा पिता माता हमारे से शत्रु है। देखो दूसरा पिता माता सबको कितना पैसा दे रहा है सिनेमा जाने के लिए, कितना दे रहा है हमको सिगरेट पीने के लिए, उनका मामी पैसा दे रहा है हमको नहीं दे रहा। हमारे माँ कितना खतरनाक है। सबसे अच्छा है भगवान का प्रति पूर्ण शरणागत हो। भगवान हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, और तो भगवान हमारे लिए जो कुछ करेंगे वही अच्छा है। हमारे केवल शरणागत उनके केवल सेवा में जुटते रहे। श्रील प्रभुपाद की
जय।
सारे गौर भक्त की
जय।
गौर ब्रह्मानंद
की
जय। मम्मी की बात सुनते हैं?
बहुत सुनते
हैं। पढ़ाई करते ठीक से?
अच्छे से करते।
पिता माता का बात